पृष्ठ 16 साहित्य और आत्मवाद। काव्य में आत्म स्वातंत्र्य। श्री ममताचार्य ने काव्य प्रकाश के आरंभ में कवि की भारती की प्रशंसा करते हुए काव्य को स्वतंत्र और आनंदमय बतलाया है। नियतिकृत नियम रहिताम रादैक मई मनन्य परतंत्राम नव रस रुचिराम निर्मिति माद धदति भारती कवेर जयति, अर्थात नियति यानी भाग्य के नियमों के बंधन से रहित, केवल आनंद से ही भरपूर, दूसरे की वश्यता से रहित, नव रसों से सुशोभित कवि की वाणी की जय हो। इस पद्य में कवि की रचना को ब्रह्मा की रचना से प्रधानता दी गई है। ब्रह्मा की रचना भाग्य के नियमों पर निर्भर रहती है, किंतु कवि की रचना ऐसे बंधनों से मुक्त है। वास्तव में कविता अनन्य परतंत्रता होने के कारण सब बंधनों से मुक्त है। काव्य में आत्मा का पूर्ण प्रभाव प्रकाशित होता है, बाह्य सामग्री का आश्रय और बंधन नहीं रहता, केवल स्वातंत्र और आनंद का प्रसार होता है। आत्मा नियति के बंधनों पर विजय प्राप्त करने में समर्थ होती है, किंतु कठिनता के साथ। जब तक उन बंधनों का प्रभाव रहता है, तब तक गति कुंठित सी रहती है। कवि जहाँ संसार में विरोध वैषम्य और प्रतिकूलता देखता है, वहाँ वह उसको अपनी कल्पना में अपने आदर्शों के अनुकूल डालने का प्रयत्न करता है। इसलिए कहा गया है कि कवि प्रजापति है, संसार को ढालता है, कवि की रुचि के अनुकूल उसकी सृष्टि बन जाती है। अपारे काव्य संसारे कविरेव प्रजापतिः यथा ने रोचते विश्वम तथेवम परिवर्तते। काव्य के संसार में आत्मा की गति अकुंठित हो जाती है। नियम के बंधनों से मुक्त होने का अर्थ उच्च श्रृंखलता नहीं, उसमें श्रृंखला रहती है, किंतु वह लोहे की जड़ श्रृंखला नहीं, वरन भावों का चेतन संबंध सूत्र है, जिसको प्राकृतिक नियमों का भार नहीं तोड़ सकता। यह श्रृंखला देश और काल के बंधनों से संकुचित नहीं होती, वरन उसका प्रसार आकाश से पाताल तक व्याप्त हो जाता है। इस स्वतंत्रता में नियम विरुद्धता नहीं, वरन आत्मा का उल्लास और विकास भरा हुआ है। काव्य उसी आध्यात्मिक स्वतंत्रता के प्रभाव का फल है, जो जड़ नियमों के प्रस्तर खंडों को तोड़कर स्वच्छंद रूप से होने की सामर्थ्य रखता है। यदि वह नियमबद्ध है तो वह दूसरों के आश्रित नहीं। इसका अभिप्राय यह न समझ लेना चाहिए कि काव्य प्राकृतिक नियमों की नितांत अवहेलना करता है। वह प्राकृतिक नियमों का आदर करते हुए भी उनसे ऊपर जाने का प्रयत्न करता है। कवि अपनी कल्पना में वास्तविकता का आधार नहीं छोड़ता, किंतु वह उसका आश्रय लेकर ही पृष्ठ 17 भावी समाज के स्वप्न देखता है। इसी प्रकार वह समाज का नियामक बनता है। काव्य छंद के नियमों से बधा हुआ बतलाया जाता है, किंतु छंद के ये नियम बाहरी नहीं है। काव्य उन नियमों का अनुकरण नहीं करता, वरन ये नियम काव्य की गति के वर्णन स्वरूप है। छंद के नियम आत्मा की स्वतंत्र स्पंदन गति के क्रम को बतलाते हैं। वह क्रम जीवन के प्रवाह से निकलता है और उसके काले अक्षरों में प्रस्तरी भूत हो जाने पर ही वह नियम के शासन में आता है। ऐसी ही स्वतंत्रता सौंदर्य के आनंद से भरपूर रहकर स्थायित्व धारण करती है। जहाँ पर गति कुंठित होती है, अभिलाषा की अपूर्णता रहती है और महत्वाकांक्षाएं संकुचित हो जाती हैं, वहीं पर आनंद का रास होता है। किंतु जहाँ पर जीवन रस का प्रभाव अकुंठित रूप से बहता रहता है, सारी चराचर सृष्टि आत्ममय हो जाती है, वहाँ पर आनंद का ही साम्राज्य है। काव्य उसी आनंद रस से सिंचित जीवन विटप का एक उत्तम फल है। काव्य में आनंद का प्राधान्य रहता है, वही आनंद काव्य के सृष्टा और पाठक के व्यक्तित्व का संबंध सूत्र होता है। यह आनंद जड़ पदार्थों का विषय नहीं है, यह चेतन और आत्म प्रधान व्यक्तियों में ही पाया जाता है। साहित्य और काव्य मनुष्यों के आत्म प्रधान भावों की अभिव्यक्ति है, यही आत्मभाव काव्य को विज्ञान से अलग करता है। साहित्य और विज्ञान, विज्ञान अपने बाह्य साधनों से जिस वस्तु का जैसा निरीक्षण करता है उसका वैसा ही वर्णन भी करता है, उसका वर्णन इतिवृत्तात्मक होता है। उसमें असुंदर को सुंदर तथा अशिव को शिव बनाने की वह स्वाभाविक प्रवृत्ति नहीं होती है जो काव्य को सत्यम ब्रूयात प्रियम ब्रूयात से आगे ले जाकर मां ब्रूयात सत्यम प्रियम का पक्षपाती बना देती है। विज्ञान का झुकाव यथार्थ की ओर होता है और काव्य वस्तु की भित्ति पर खड़ा होकर आदर्श की ओर भी देखता है। विज्ञान का क्षेत्र चेतना से रहित निर्जीव एवं निरीह प्रकृति है। वह मानव को भी प्रकृति का एक अंग भौतिक और प्राणी शास्त्र के नियमों से बंधा हुआ अस्थि मज्जा आदि से सुसज्जित मांस का एक पिंड मात्र मानता है, किंतु काव्य का क्षेत्र मानव हृदय है। उसकी दृष्टि में प्रकृति का भी एक भावनामय स्वरूप है, उसके भी अपना सा या उससे कम स्पंदनशील हृदय है। वह अपने हर्ष एवं विषाद को सहृदय के सम्मुख व्यक्त करने में तनिक भी संकोच नहीं करती। उसके संपूर्ण क्रियाकलापों में एक गुप्त रहस्य है जो सहृदय के हृदयंगम करने का विषय है। कवि कल्पना में नव यौवना गुलाब की कली चटक कर मानो भ्रमर को आमंत्रित करती दिखलाई देती है। शिथिल पत्रांग में सोती हुई जूही की कली का सौंदर्य किसी भी विलासी के लिए उद्दीपक हो सकता है, अस्तु वैज्ञानिक के लिए तो कुसुम केवल कार्बन हाइड्रोजन लोहा पृष्ठ 18 आदि कुछ तत्वों का संघात मात्र है। वह उसका विश्लेषण करके उसके स्वाभाविक सौंदर्य को छिन्न भिन्न भले ही कर सकता है, किंतु उसका वह अपूर्व मनमोहक स्वरूप जो लोकोत्तर आनंद का प्रतिपादक है उसकी पहुंच से अगम है। वह गुड़ को भी परिमाण का ही रूपांतर समझता है। वैज्ञानिक के लिए जाति प्रधान है व्यक्ति नहीं। साहित्य में व्यक्तित्व का ही विशेष महत्व है। सूर की गोपियां कृष्ण को छोड़कर ब्रह्मा को नहीं चाहती। ता भीतर क्यों निर्गुण आवत जा उर श्याम सुजान, वे उधव से स्पष्ट कह देती हैं, उधव तुम अति चतुर सुजान, जो पहले रंग रंगी श्याम रंग तिन्हे न चढ़े रंग आन, द्वैलोचन जो विरत किए सुन्ति गावत एक समान, भेद चकोर कियो तिन्हू में विधु प्रीतम रिपु भान। भ्रमर गीत सार। जब चकोर भी सूर्य और चंद्र के व्यक्तित्व में अंतर कर सकता है तब मनुष्य व्यक्तित्व में क्यों ना अंतर करेगा। पार्वती की प्रतिज्ञा बरहु शंभु नतु रहो कुआरी आदि के वचन इसी व्यक्तित्व के प्राधान्य के उदाहरण हैं। नल और दमयंती का उपाख्यान साहित्य में व्यक्तित्व के प्राधान्य का एक अच्छा उदाहरण है। दमयंती नल को ही वरण करना चाहती है। देवताओं में नल की अपेक्षा धन वैभव और शक्ति का बाहुल्य था, किंतु दमयंती नल के व्यक्तित्व पर न्योछावर हो चुकी थी। देवताओं ने नल का भी रूप भी धारण किया, किंतु उस रूप साम्य में भी नल का व्यक्तित्व विलीन न हो सका। दमयंती ने अपना मनोनीत व्यक्ति उसके व्यक्तित्व के आकर्षण में से खोज निकाला। लेखक और पाठक का भाव साम्य। काव्य में यद्यपि साधारणीकरण रहता है तथापि वह व्यक्ति के ही दृष्टिकोण से लिखा जाता है और वह समान धर्म और समान भाव वाले व्यक्तियों के लिए ही अभिप्रेत होता है। कवि के कवित्व का रसिक जन ही आस्वाद करते हैं, इसलिए कवि विधाता को चुनौती देते हुए यह कहता है कि मेरे भाग्य में चाहे जो कुछ आपत्तियां और यातनाएं वह लिख दे, किंतु अरसी केशु कवित्व निदेनम शिरसी मां लिख। महाकवि भवभूति अपने समान धर्म धर्मा पाठक के लिए अनंत काल तक प्रतीक्षा करने को तैयार थे। कालो यम निर्वधि विरपुला च पृथ्वी, काल की अवधि नहीं और पृथ्वी भी अनंत है। कहीं और कभी उसका समान धर्मा पाठक मिल ही जाएगा। कवि लिखता अपने ही दृष्टिकोण से है, लेकिन वह सब समान धर्म पाठकों व श्रोताओं के आनंद और उपभोग का विषय बन जाता है। इसलिए साहित्य में व्यक्तित्व को महत्व देते हुए भी साधारणीकरण की आवश्यकता हो जाती है। कालिदास का मेघदूत सभी विरही हृदयों के तोष का विषय बन जाता है और तुलसी का रामचरित मानस सभी भक्त हृदयों को भाव प्रवण कर देता है। संसार पृष्ठ 19 और रसिकता शून्य पाठकों के लिए मेघदूत और रामचरित मानस दोनों ही शब्द जाल मात्र हो जाते हैं। कवि का काव्य उसके आत्मभाव का प्रतिबिंब होता है। प्रत्येक कवि और कलाकार की एक शैली विशेष होती है जो उसको दूसरों से अलग खड़ा कर देती है। बिहारी के दोहे फानूस से अलग चमकते दिखाई देते हैं। कबीर के दोहे छिपाए नहीं छिपते। शैली में कलाकार के व्यक्तित्व की छाप रहती है। तभी तो कहते हैं स्टेली ऑफ द मैन। कवि की कृति में हम उसकी आत्मा के दर्शन करते हैं। आज 300 वर्ष बाद भी कवि कुल चिंतामणि गोस्वामी तुलसीदास जी के हम उनके रामचरितमानस में दर्शन पा सकते हैं। महर्षि वाल्मीकि और होमर अपनी अमर कृतियों में आज भी जीवित हैं। वे स्वयं ही जीवित नहीं हैं, वरन हमारे जीवन को भी सरस और संपन्न बना रहे हैं। हम उनके भावों से प्रभावित हो उनकी ही भांति सुख दुख के सागर में गोते खाने लगते हैं। कवि और पाठक का यही भाव तादात्म्य साहित्य को समाज की मूल प्रेरक शक्ति बनाता है।